जनवरी मास में पूरा पुरुषार्थ करते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा समान बने और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किए, जैसे बोल बोले, जैसे कर्म किए, वैसे ही हमारे भी संकल्प, बोल और कर्म हो। तो हम सब में से बहुत ऐसे हैं जो बाबा को साकार में तो नहीं मिले हैं, साकार में बाबा को नहीं देखा है, तो फिर क्या हम बाबा को फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि हम जो अपने वरिष्ठ दादियों से, भाइयों से, जिन्होंने उनके साथ साथ अनेक वर्ष बिताए हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। स्वयं शिव बाबा ने मुरलियों में अनेक बार ब्रह्मा बाबा के चरित्रों के बारे में हम बच्चों को समझाया है, इतिहास हम पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि बाबा का जीवन कैसा था। और बाबा ने अपने अंतिम क्लास में, जो 18 जनवरी को बाबा का अंतिम क्लास था, रात्रि क्लास, उसमें जब बच्चों से विदाई ली, तो उस क्लास में बाबा ने ये तीन शब्द प्रयोग किए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं ये स्थिति प्राप्त की थी और ये संपूर्ण स्थिति है, और बाबा हम बच्चों को भी अपने समान ही बनाना चाहते हैं। निराकारी स्थिति में रहना, ये ब्राह्मणों का पहला पाठ है। मैं आत्मा हूं, आते ही पहले दिन हम ये पाठ पढ़ते हैं, पर बाबा कहता है ये अंतिम पाठ भी है, कि अंत दिन तक हम इस पाठ में ही कच्चे होते हैं। ये स्मृति हमें सिर्फ बहुत कम समय रह पाती है, विशेषकर जब हम योग में बैठते हैं तब हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, लेकिन सारा दिन हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, या बीच बीच में बॉडी कॉन्शियस यानी देह अभिमान में भी आ जाते हैं, तो आत्मिक स्मृति नहीं रह पाती है। पर बाबा कहता है कि आप बच्चों को इस शरीर में रहते हुए ऐसे कर्म करना है जैसे कर्म करते समय इस देह का आधार लिया, और कर्म पूरा हुआ तो न्यारे हो गए। जो हम उदाहरण देते हैं कि कछुआ, कछुआ कैसे रहता है कि जब उसको कर्म करना है तब अपने अंगों को वो बाहर निकालता है, और जब उसका खाना चलना पूरा होता है तो अपने अंगों को वो समेट लेता है। ऐसे ही शिव बाबा भी अपने लिए कहते हैं कि शिव बाबा जब तन में प्रवेश करते हैं तो थोड़े समय के लिए तन में प्रवेश करते हैं। बाबा हम बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारण करते हैं, बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, और जैसे ही कार्य पूरा हुआ बाबा देह को छोड़ देते हैं। तो वो देह मेरी नहीं है, ऐसे ही ये जो तन है ये मेरा तन नहीं है, ये तन किसको दिया है, किसको सेवा अर्थ दे दिया है, मेरा तन है या बाबा का है, क्या कहेंगे? ये तन बाबा को सेवा अर्थ दिया है। तो अगर इस तन में हम अपने को मेहमान समझते हैं तो फिर मेहमान का उस तन में मोह नहीं होगा। जैसे कोई भी मेहमान कहीं जाता है तो उस स्थान पर उसका मोह नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। तो इस संसार में भी मेहमान हूं और इस तन में भी मैं मेहमान हूं, कार्य करने के लिए आती हूं, लेकिन मेरा असली स्थान या तो आकारी वतन, सूक्ष्म वतन है, नहीं तो परम धाम निवासी हूं। और जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तभी परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में योग की अनुभूति करना भी हमारे लिए सहज होता है। निराकारी स्थिति का सारे दिन में अटेंशन रखते हुए हमें अभ्यास करना है। बाबा ने कई बार हमें कहा है कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट, मुझे ये स्मृति में रखना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारी बुद्धि बहुत बिजी नहीं होती है, तो हम ये स्मृति ला सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें अभ्यास या मेहनत, तभी बाबा कहता है कि देही अभिमानी बनना इतना आसान नहीं है, तो वो मेहनत हमें करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के इतिहास में भी हम सुनते हैं कहानी में कि शुरू शुरू में जब आत्मा का ज्ञान शिव बाबा ने दिया तो बाबा ने कितनी मेहनत की उसके ऊपर, अपनी दारियां तक भरी लिख लिख करके, यहाँ तक कि बाबा कई बार दीवारों पर भी लिखते थे और अपने घर के यहाँ तक कि एक एक सदस्य के नाम से ये स्मृति में लाते थे कि जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मल शांता दादी हैं, उनका नाम उस समय पालू था, पालू आत्मा है, तो हरेक के नाम से बाबा जैसे हमेशा उनको आत्मिक स्मृति से ही देखना है, जो लौकिक भाव है वो निकल जाए, लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन किया, तो आत्मा समझते ही दृष्टिवृत्ति हमारी परिवर्तन होने लगती है, आत्मा समझते ही दृष्टि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और जब दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो उनके प्रति हमारी सदा आत्मिक भाव भावना रहने से शुभ भावना और शुभ कामना बन जाती है। ये स्मृति वृत्ति से जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, जहां भी हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, जहां भी कार्य कर रहे हैं, सेवा केंद्र पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनको आपसे न्यारापन अनुभव होगा, वो आपसे महसूस करेंगे कि इनमें रूहानियत है, इनमें पवित्रता है, ये हमसे भिन्न है, और जिसको बाबा कहता है कि आपका चेहरा और चलन सेवा करती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना कहे ही आपकी दृष्टि वृत्ति उन आत्माओं की सेवा करती है, उन आत्माओं को बाबा के ज्ञान के समीप लाती है। वो अपने आप ही आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा कौन सा अभ्यास करते हैं, और आत्मिक दृष्टि जब हमारी होती है तो हम प्रभावित नहीं होते परिस्थितियों से, और जब प्रभावित नहीं होते हैं तो हम सदा प्रसन्न रहते हैं, हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती ही तभी है जब प्रभावित हो जाते हैं, तो क्योंकि ये साक्षी स्थिति है, आत्मिक स्थिति में रहना यानी साक्षी भाव में रहना, हम आत्मा के कर्मों को साक्षी भाव से देखते हैं या जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, यानी मैं उससे न्यारी हूँ, यानी न्यारा और प्यारा बनने की कला ये निराकारी स्थिति से ही आती है, कि जब चाहे हम कर्म कर रहे हैं, जब चाहे हम कर्म से न्यारे हो जाते हैं, और यदि हमें ये बहुत अच्छा अभ्यास है, एक सेकंड में हम न्यारे हो जाते हैं, तो जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो स्थिति एकरस रहती है, और स्थिति एकरस रहती है तो हम प्रसन्न रहते हैं, तो हमारा प्रसन्न चित्त स्थिति भी अन्य आत्माओं की सेवा करती है। और जब हम निराकारी स्थिति में होते हैं तब हमारी फ्रिक्वेंसी शिव बाबा की फ्रिक्वेंसी की तरह होती है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं सदा ही निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो उस स्थिति में जब हम बाबा से कनेक्शन करते हैं, योग लगाते हैं, तो हमें संपूर्ण शक्तियों का अनुभव होता है, जिसे बाबा बीज रूप स्थिति कहते हैं, और उस बीज रूप स्थिति में सर्व गुणों का सार समाया हुआ है, और वो स्थिति ही आत्मा के विकर्म विनाश करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म नाश हो जाएं, रोज बाबा मुरली में कहते हैं कि याद से ही तुम बच्चों के विकर्म विनाश होंगे, हाँ, लेकिन फिर भी कर्म भोग हमारे सामने आते हैं, इसका मतलब हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए, क्योंकि हमारा योग इतना पावरफुल नहीं होता है, योग की उस स्थिति तक हम नहीं पहुंच पाते। हम जो योग करते हैं वो ज्यादातर रू रिहान वाला योग होता है, या योग में मन को सेट करने में ही हमारा टाइम चला जाता है। तो जो ज्वालामुखी योग की स्थिति अनुभव होनी चाहिए, वो पावरफुल योग की स्थिति से ही आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, पुराने संस्कार भस्म होते हैं, जिसे बाबा कहता है। नहीं तो वो थोड़े समय से ज्ञान से, माना हमने मुरली सुनी, आज बाबा ने मुरली में ये कहा मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा समय के लिए वो दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है, बाबा कहता है वातावरण मिलता है, फिर से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई पेड़ को आप जड़ से नहीं काटते हैं, उसकी शाखाएं काट देंगे तो क्या होगा, फिर से जैसे ही उस पेड़ को पानी मिलेगा, धूप हवा मिलेगी, फिर से वो हरा भरा होने लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारे संस्कार भी थोड़े समय के लिए दब जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वापस इमर्ज हो जाते हैं, फिर हमें लगता है इस पर तो मैंने पुरुषार्थ किया था, फिर ये संस्कार कैसे सामने आ रहा है, क्योंकि उसको हमने पावरफुल योग की स्थिति से भस्म नहीं किया। और वो पावरफुल योग की स्थिति बिना निराकारी स्थिति या बिना आत्मिक स्थिति के, अशरीरी स्थिति के नहीं हो सकती है। उस स्थिति में ही जैसे हम कहते हैं कि दो तारों का पूरा रबड़ निकालेंगे तभी पूरा करंट फ्लो होता है, ऐसे ही बाबा की पूरी करंट आत्मा को तभी मिलती है जब पूरी तरह से देह सहित देह के संबंधों से आत्मा न्यारी है। उस अशरीरी स्थिति में हम स्थित हैं, और इस स्थिति में अगर कोई कर्म भोग हमारे सामने आता भी है, कर्म भोग के रूप में यानी शरीर के कोई रोग के रूप में वो हमारे सामने है, तो बीमारी भी होगी तो वो कर्म योग से सूली से कांटा हो जाएगी। ये बहुत बाबा के बच्चे अनुभव भी करते हैं, कितना भी दर्द है कितना भी तकलीफ है, लेकिन अगर मन पर उसका प्रभाव नहीं होता है तो आत्मा स्वस्थ है। तन में भले वो रोग आया लेकिन मेरे मन को उसने प्रभावित नहीं किया, यानी कर्म भोग को कर्म योग से मैं सहज चुकतू कर पा रही हूँ, और वो मुझे ऐसे अनुभव होता है जैसे या तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो जैसे मक्खन से बाल, कैसे हम मक्खन से बाल निकालते हैं तो कितनी मेहनत लगती है हमें, या पानी पर लकीर होती है वो कैसे होती है, ये अनुभव होता है। लेकिन तब होगा जब हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास, पावरफुल अभ्यास होगा। यदि नहीं, हम अगर बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस होने के बजाय अगर मैं बीमारी कॉन्शियस हो जाती हूँ, मेरे संकल्प बीमारी में ही रहते हैं, मुझे ये हो गया वो हो गया अब कैसे ठीक होगा क्या होगा, तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी। सूली से कांटा होने के बजाय कांटे से सूली हो सकता है। तो मेरी स्थिति पर वो निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं कि हम जिस तरह से सोचते हैं वैसे ही बिल्कुल उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर आता है, या हमारे शरीर पर भी आता है। मन और तन का बहुत गहरा कनेक्शन है। आप सभी यहाँ पर जब हमारे डॉक्टर्स क्लासेस कराते हैं तो आप सुनते हैं किस तरह से वो ये सारी बातें हमें समझाते हैं कि हम किस तरह से अगर संकल्प नेगेटिव करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग पैदा होते हैं। तो जैसे ही आत्मिक स्थिति में हम मन को स्थित करते हैं, बाबा की वो रूहानी शक्तियां या बाबा की जो दुआएं हमें मिलती हैं वो हमारे उस हिसाब किताब को सहज चुकतू कर देती हैं। और फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आवश्यकता है तो आपको दवाई नहीं लेनी है। आवश्यकता है तो जरूर दवाई ले लो, क्योंकि कलयुग में ये तमो प्रधान प्रकृति के तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो यदि इसमें कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए ये सब साधन बने हुए हैं कि वो मदद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर रूहानी शक्ति है, बाबा की दुआएं भी हमारे साथ हैं, तो बहुत सहज हम उसे पार कर लेते हैं। और विशेष निराकारी स्थिति का अभ्यास हमें अमृत वेले के समय करने में मदद मिलती है, क्योंकि अमृत वेला सात्विक समय है और हमारा मन भी उस समय शांत होता है, सात्विक स्थिति में होता है, तो लाइन बिल्कुल क्लियर होती है। उस समय हम जितनी पावरफुल स्थिति बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सुस्ती का असर जो अमृत वेले में माया इस रूप में लाती है, अगर वो सुस्ती का प्रभाव हमारे ऊपर है तो फिर हम कोई भी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अलर्ट होकर बैठते हैं और उस समय यदि हम परम धाम में बिल्कुल शिव बाबा के साथ निराकारी स्थिति में बैठते हैं, अपनी बीच रूप स्थिति का अनुभव करते हैं, न सिर्फ हम स्वयं बाबा के वरदानों से स्वयं को संपन्न करते हैं पर अन्य विश्व की आत्माओं को भी वो पावरफुल किरणें वाइब्रेशंस हम सहज फैला सकते हैं, क्योंकि उस समय सब आत्माएं भी सोई हुई होती हैं, तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो दबे हुए होते हैं, नींद के कारण उसका भी प्रभाव कम से कम होता है। तो हम जिनके प्रति भी वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा भी अमृत वेले के समय सबसे श्रेष्ठ हो सकती है। और ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम सुनते हैं कि बाबा ने अंत तक अशरीरी स्थिति का बहुत पावरफुल अभ्यास किया, और इसीलिए हमारी दादियां सुनाती हैं या बड़े भाई सुनाते हैं कि जब वो पहली बार बाबा से मिले तो पहली बार में ही बाबा से उनको वो अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ, जैसे वो समझते गुम हो गए, अपना भान ही नहीं रहा, देह का भान बिल्कुल भूल गए, क्योंकि बाबा ने जैसी दृष्टि दी वैसा ही अनुभव उन्हें हुआ। तो यदि हम भी अशरीरी स्थिति का पावरफुल अनुभव समय समय पर करते हैं तो अन्य आत्माओं को भी हम वैसा ही अनुभव करा सकते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट में जो साक्षात्कार का पार्ट चलेगा उसका आधार भी ये डबल लाइट स्थिति होगी, आत्मिक स्थिति के साथ साथ मैं आत्मा भी प्रकाश स्वरूप हूँ, यानी फरिश्ता स्थिति जो डबल लाइट स्थिति है, अगर ये निरंतर हमारी रहेगी तो फिर अन्य आत्माओं को हमारे द्वारा सहज साक्षात्कार होंगे। जैसे स्थापना के आदि में शुरू में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए और उनके कारण लोग ब्रह्मा बाबा के पास आए कि हम इनको देखते हैं, ये हमें सपने में दिखाई देते हैं, या अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ये हमारे सामने आते हैं और हमें इशारा देते हैं इधर आओ, तो यहाँ हम इनके पास आए। तो साक्षात्कार से ही उस समय स्थापना हुई, जो आदि है सो अंत होना है ये बाबा हमेशा कहते हैं, लेकिन उसकी स्थिति साक्षात्कार की जो स्थिति है कौन साक्षात्कार करा सकेंगे, उस समय वही आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बनेंगी जिनकी इतनी पावरफुल आत्मिक स्थिति या अशरीरी स्थिति डबल लाइट स्थिति का अभ्यास होगा, और उसमें वो सेफ भी रहेंगे। बाबा दो दिन से मुरलियों में कह रहे हैं कि विनाश का समय कैसा होगा कि मिरुआ मौत मलू का शिकार, तो यदि हम अशरीरी स्थिति में हैं तो अकाले मृत्यु हमारे लिए नहीं होगी, अकाले मृत्यु से हम सेफ हो जाएंगे, और इसीलिए खुश मौज में उस समय भले ही संसार में हाहाकार हो रहा है या विनाश का दृश्य उपस्थित है, लेकिन हम उसमें खुश मौज में रहेंगे कि बाबा से वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है उससे हम में इतनी शक्ति रहेगी, इतनी वो खुशी की स्थिति एक रस स्थिति हमारी बनी रहेगी। और यदि हमारा समय भी होगा जाने का तो एक सेकंड में आत्मा शरीर से डिटैच हो सकेगी, क्योंकि पहले से ही डिटैच होने का अभ्यास हमने किया हुआ है। और निर्विकारी स्थिति निराकारी स्थिति से सहज बनती है, क्योंकि आत्मा में सर्व गुणों का सार है और जब उन गुणों का हम स्वरूप बन जाते हैं तो विकार स्वतः ही हमसे विदाई ले लेते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं और इन विकारों की हमें समझ होती है तो मोटे रूप से तो ये विकार विदाई ले लेते हैं, हम उनके स्वरूप को समझते हैं और बहुत सहज कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है वो समझ जाते हैं और उस पर अटेंशन भी देते हैं। काफी हद तक उन नेगेटिव बातों से हम मुक्त भी होने लगते हैं, लेकिन उसका जो अंश वंश है, बाबा कहता है उस अंश वंश को विदाई देने में है, जिसको माया का रॉयल रूप भी बाबा कहते हैं, अगर वो परखने की शक्ति हमारी कमजोर है तो कहीं ना कहीं वो विकार अपना दांव लगा लेते हैं बीच बीच में और उन परीक्षाओं में हम कहीं ना कहीं फेल होते रहते हैं। तो जैसे काम विकार के लिए बाबा कहता है, ब्रह्मचर्य का पालन हम सब बाबा के बच्चे करते हैं, ये ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, तो उसमें तो हम सभी पास हैं, लेकिन जो उसका सूक्ष्म रूप है उसको बाबा कहता है सबसे पहले दृष्टिवृत्ति, यानी मनसा भी शुद्ध हो। अगर आत्मिक दृष्टिवृत्ति है तो फिर मनसा भी शुद्ध होगी। अगर आत्मिक दूसरों को मैं आत्मा रूप में नहीं देखती हूँ, अगर मेरी दैहिक दृष्टि जाती है तो फिर उसकी सुंदरता उसके गुणों पर भी मेरी दृष्टि जाएगी, और अगर दैहिक आकर्षण होता है तो फिर काम विकार के संकल्प हो सकते हैं। तो बाबा जिसको कई बार कहते हैं सिविल आई और क्रिमिनल आई, माना हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, तो बाबा हमेशा कहता है कि आप मस्तक में मणि को देखो, देह रूपी सांप को देखो ही नहीं। तो आत्मिक दृष्टिवृत्ति इससे भी हमको सेफ करती है कि हम काम विकार के वो जो सूक्ष्म अंश का वार होता है उससे भी हम बच सकते हैं। और दूसरा, अगर मुझे कोई आत्मा बहुत स्नेह देती है, सहयोग देती है, ऐसे कोई ना कोई हर एक के होते ही हैं कि समय पर आपको उनका साथ मिलता है तो थोड़ा झुकाव उनकी तरफ ज्यादा होता है या धीरे धीरे वो लगाव का रूप ले लेता है। तो अगर किसी के प्रति भी मेरा एक्स्ट्रा स्नेह है तो बाबा कहता है वो भी काम का अंश है, और उसकी निशानी होती है योग में वो आत्मा मुझे ऊंची स्थिति का अनुभव करने नहीं देगी। आप योग में बाबा को याद करना चाहेंगे लेकिन वो आत्मा के संकल्प आपको इंटरफेयर करेंगे। कई बार ये उल्टा रूप भी लेता है, बाबा कहता है कि लगाव उल्टा भी हो सकता है तो उल्टा भी हो सकता है। मानो किसी आत्मा से मुझे कुछ सूक्ष्म घृणा है, उसके कोई ऐसे अवगुण हैं जो मुझे पसंद नहीं है, उसके दिल पसंद न करने वाले कर्म, क्योंकि वो मेरे संपर्क में रहती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मैं तंग होती हूँ या इनसे मैं परेशान होती हूँ, तो वो जो टकराव होता है मेरा वो भी मेरे मन को खींचता है, मेरी बुद्धि के लिए वो बोझ बन जाता है। और जैसे ही हम योग में बैठते हैं वो आत्मा मुझे योग से नीचे ले आती है, योग की ऊंची स्थिति तक वो मुझे जाने नहीं देती है। तो ये निशानी है, ये सूक्ष्म की निशानी है, हम चेक कर सकते हैं कि मेरे मन बुद्धि का लगाव किसी आत्मा की तरफ है या मैं पूरी तरह से लगाव मुक्त हूँ। अगर जैसे ही हम बैठते हैं और जिस स्थिति में मन को स्थित करना चाहें उस स्थिति में मेरा मन स्थित हो जाता है सहज, तो मेरी लाइन बाबा के साथ बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही क्रोध, क्रोध के रूप में भी हम मोटे रूप पर तो सब विजयी हो जाते हैं, हम दुनिया वालों जैसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं या सामने सामने किसी को कटु वचन कहकर के दुख पहुंचाएंगे, ऐसा हम क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो अंश वंश है, अब जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे सभी आप परिवार में रहते हैं, अब बच्चे हैं, गलती करते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, या जहां आप काम करते हैं वहां आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? न चाहते हुए भी गुस्सा कर जाते हैं, या करते नहीं हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन मन डिस्टर्ब हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने इस बात के लिए हमें समझाया है, ये परिस्थितियां कलयुग में बहुत आम है, होना ही है। जो संसार के लोग हैं वो आपके जैसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और अगर ज्ञानी भी हैं तो सब नंबरवार हैं, हर एक की अपनी अवस्था है। तो हमें ये समझना है कि आत्माएं तमो प्रधान स्थिति में हैं, वो परवश हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं शांति का दान देने वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। अगर कोई आत्मा परवश है, माया के इस रूप के परवश है, तो मुझे उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, मुझे उसको सहयोग देना है, ना कि उसके साथ मुझे भी नाराज हो जाना है या उसके साथ मुझे भी गुस्सा करना है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी गलती भी करते हैं, और मानो हम निमित्त हैं, कहीं हम निमित्त भी होते हैं कि हमें उनको सिखाना है, मार्गदर्शन देना है, ये हमारा फर्ज है, तो जरूरी नहीं है हम गुस्से से ही किसी को सिखाएं, हम प्रेम से भी सिखा सकते हैं, हम शांति से भी सिखा सकते हैं, सिखाने का भी तरीका होता है। तो अगर हमने शुभ भावना से किसी को सिखाया, प्रेम से सिखाया, तो वो जरूर इसे सीखते हैं और उसे रियलाइज भी करते हैं कि इनकी मेरे प्रति शुभ भावना। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं कि बाबा ने कभी भी बच्चों को शिक्षा दी, मुरली में भी रोज बाबा हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन वो हमें हमारे प्रति, चाहे वो कितने ही अथॉरिटी के बोल हैं बाबा के, लेकिन हमें लगता है हम हमारी भलाई के लिए हैं, बाबा हमारी उन्नति के लिए ही हमें ये सावधानी दे रहे हैं या हमें ये बात कह रहे हैं। तो अगर हमारे मन की भावना शुभ है तो वो बोल कभी भी उनको बुरे नहीं लगेंगे, वो हमेशा हमें अपना शुभ चिंतक समझेंगे, फिर चाहे बच्चे ही क्यों ना है। बच्चे गलत कर रहे हैं, आप उनको समझाते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, तो बाबा कहते हैं ही तमो प्रधान रचना ना, तो आप समझाइए, अपना फर्ज पूरा करिए, नहीं मानते तो उनके भाग्य पर उनको छोड़ दो। और किसके हैं, मेरा समझना ही नहीं है, बच्चे किसके हैं, बाबा के हैं, बाबा के हैं, तो जिम्मेवारी बाबा की है, उनका जो भी भविष्य है वो बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है ही नहीं। तो आपको वो क्रोध की स्थिति का सामना ही करना नहीं पड़ेगा। तो इस बात को समझते हुए जो अंश वंश भी आता है उसको भी हम विदाई दे सकते हैं कि आत्माओं की स्थिति क्या है और इस समय मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो मुझे तो परिवर्तक बनना है, समाधान स्वरूप बनना है, ना कि मैं ही उसमें फेल हो जाऊं। किसी ने गुस्सा किया और मैंने भी गुस्सा किया तो बाबा कहता है वो तो फेल हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में मैं भी पास हुई या फेल हुई, मैं भी फेल हो गई, तो फिर मैंने उस परीक्षा को पास तो नहीं किया जो ज्ञान के अनुसार मुझे करना चाहिए। और अगर हम गुस्सा करते हैं तो बाबा का नाम हम सीधा बदनाम करते हैं, अपने सद्गुरु की हम निंदा कराते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम आश्रम में जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, और फिर भी अगर हम ऐसे वचन अपने मुंह से बोलते हैं या हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं तो ये बात बाबा के ज्ञान की निंदा कराती है। फिर अगर हम लोक की बात करते हैं तो हमको धन से अब ज्ञान में आने के बाद इतना लोभ नहीं होता है, जैसे संसार में बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग धन के पीछे क्या क्या गलत काम भी करते हैं, सुनते हैं आज कितना भ्रष्टाचार इस संसार में फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि धन की शक्ति को लोग सब कुछ मानते हैं, वो बोलते हैं आज आपके पास धन है, मकान है, बड़े बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो सारी दुनिया में आपकी मान्यता है, और अगर नहीं है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। तो उसके लिए ये सब करते हैं, पर हमें पता है कि ये सब विनाशी है। बाबा ने हमें अच्छी तरह समझा दिया है कि ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी राजा खाए। तो हम इसके पीछे नहीं भागते हैं कि हमें बहुत करोड़पति बन जाना है या लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में भी अंश वंश कहीं ना कहीं रह जाता है। अब जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं कि हमारे पास वस्त्र होने चाहिए, जो भी हमारी आवश्यकता के सामान है, खाना पीना कैसा होना चाहिए, रहना कैसा होना चाहिए, मकान कैसा होना चाहिए, आज के जो साधन है वो सब साधन भी हमें भी चाहिए, वो सब होने चाहिए। और अगर वो नहीं है तो पूरा प्रयास हमारी इच्छा रहती है कि ये मुझे मिल जाए। तो उसके पीछे अगर मेरी बुद्धि लगी रहती है, आवश्यकताएं तो सहज पूरी होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की भी बाबा कहता है हद होती है। अगर वो हद बेहद में चली जाए, मेरे पास चार जोड़ी जूते हैं, वो मेरे लिए बहुत हैं, लेकिन उसकी बजाय 10 जोड़ी जूते मैंने रख दिए, तो फिर संग्रह करने की प्रवृत्ति वो लोभ के कारण होती है। 20-25 जोड़ी कपड़े मैंने रखे हुए हैं, या एक मकान है, अभी एक और मकान, एक गाड़ी है, एक और गाड़ी, या एक मोबाइल है उससे मेरा काम चलता है, उसकी बजाय नए मॉडल का कोई निकला तो मेरी बुद्धि उसमें भी जाती है। ये सब लोभ का अंश है। और ब्राह्मण माना बेहद की वैराग वृत्ति वाले, इसको बाबा कहता है कि लोभ के इस अंश वंश को भी हमें विदाई देना है कि समय पर किसी भी चीज में मेरी बुद्धि जाती है तो वो अंतिम समय के पेपर में, बाबा कई बार कहता है एवर रेडी रहो, कुछ भी अचानक हो सकता है, और अचानक और एवर रेडी के पेपर में अगर बुद्धि कहीं और है तो हम फेल हो सकते हैं। तो ये अभ्यास हमारा बहुत काल से चाहिए, ऐसे नहीं अंत समय में हम कर लेंगे, अंत समय में तो हमसे हो जाएगा, लेकिन बहुत काल से बाबा कहता है जब ये न्यारी और प्यारी स्थिति होगी तब उस पेपर में भी हम पास हो सकेंगे। फिर मोह जहां तक देखा जाता है तो वो मोटे रूप में लौकिक संबंधों से हम अपना मोह तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबा ने हमें समझाया कि मेरापन नहीं होना चाहिए, तो पूरी कोशिश करते हैं कि संबंधों में जो स्नेह सहयोग प्राप्त होने के कारण हमारी बुद्धि जाती है उनमें वो ना जाए। बुद्धि है वो ज्यादा समय मेरा बाबा, मन मेरा बाबा में रहे, ना कि मेरा पति, मेरे बच्चे या मेरे संबंधी उनमें रहे। और काफी हद तक हम उसमें सफल भी होते हैं, लेकिन फिर भी माताओं को बाबा कहता है विशेष मोह होता है। मोह की जो कमजोरी होती है वो माताओं में ज्यादा होती है, यहाँ तक कि पोतरे धोतरे भी होंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत मोह रहता है, ऐसे बाबा कहता है। और मोह की निशानी, उसके अंश की निशानी है कि मेरा मोह है, आपको दुख होगा यदि उनको कुछ भी होता है तो। शोक और दुख, चाहे कोई वस्तु मेरी है और वो गुम हो जाती है, या उसको कुछ नुकसान होता है और मुझे दुख होता है, तो इसका मतलब मेरा मोह उसके अंदर है। अगर मुझे दुख नहीं होता है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इसका मतलब मेरा मोह नहीं है। मानो हमारे शहर में कोई शरीर छोड़ता है तो हमें कुछ असर नहीं होता है, भले हमने वो समाचार सुना कि शहर में फलाने फलाने की मृत्यु हुई, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसमें कोई मेरापन नहीं है, मेरा अपनापन नहीं है। तो कितने लोग मरते हैं सारी दुनिया में, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मेरे घर में मेरे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो मुझे बहुत दुख होता है, लोग रोते तक हैं इस बात के लिए, चलो हम रोते नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे दुख होता है तो इसका मतलब उसमें मेरा मोह था। ऐसे ही एक बार एक व्यापारी थे, वो अपने दुकान में बिजनेस पर बैठे थे और उनको खबर मिली कि उनके घर में आग लग गई है। तो घर में आग लगना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो जैसे ही ये खबर सुनी तो तुरंत वो सब अपना बिजनेस नौकरों के हवाले करके भागे अपने घर की तरफ। तो पहुंचे तो देखा कि घर जल रहा था और परिवार वाले तो सब बाहर निकल गए थे, काफी सामान भी उन्होंने निकाल लिया था बाहर, लेकिन घर जल रहा था। तो बहुत ही उनको शोक होने लगा उस अपने घर का इतना नुकसान होते हुए देखकर। और ऐसे ही उन्होंने अभी इन्हीं दिनों में एक नया घर लिया था, बड़ा घर, तो वहां वो शिफ्ट होने वाले थे। तो ये जो पुराना घर था वो उन्होंने बेचने के लिए लगा रखा था, तो उनके हाथ में पूरे पेपर्स नहीं आए थे, तो उसके कारण वो दुखी थे कि घर अभी बिका ही नहीं और जल रहा है, कितना नुकसान हो गया। तो उनके पड़ोसी आए उस समय उनके पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप क्यों दुखी हो रहे हैं। तो उसने कहा मेरा घर जल रहा है। तो उसने कहा दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज ही आपके बड़े बेटे ने सवेरे इसके सारे पेपर फाइनल करके इस मकान की पूरी पेमेंट ले ली है, और जो एक साइन होते हैं ना साथ में कि कौन इसका वो है गवाह है, तो उसमें उन्होंने मेरे सिग्नेचर भी कराए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि ये मकान बिक चुका है और अब ये मकान उनका अपना नहीं है, तो क्या हुआ, वो जो दुख हो रहा था वो पूरा दुख उनका तुरंत खत्म हो गया। हाँ, मकान अभी भी चल रहा है लेकिन अब उनको बहुत तसल्ली है कि ये जैसे ही मेरा पन खत्म हुआ वैसे ही दुख खत्म हो गया। तो दुख कब तक था, जब तक वो मकान मेरा था। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि अंतिम पेपर भी हमारा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यहाँ तक कि मेरी देह में भी मेरापन ना हो। ये देह भी मेरी है, जो हमने शुरू में सुना कि देह भी किसको दिया, हमने बाबा को दिया। पूरी तरह से ट्रस्टी होकर रहना है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब बाबा का है, सब कुछ तेरा। इसीलिए भक्ति में भले गाते रहे तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अभी सिर्फ गाना नहीं है लेकिन सचमुच मैं ट्रस्टी हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। अगर मेरापन होगा, मेरापन होगा तो अंत समय वो हमारी स्थिति को एक रस रहने नहीं देगा, मन हलचल में आएगा, दुखी होगा। दुखी होते ही हम जो फाइनल पेपर है बाबा जिसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, उस फाइनल पेपर में हम पास नहीं हो सकेंगे। तो ये चेकिंग है, इससे हम चेक कर सकते हैं क्या किसी भी चीज के कारण मुझे दुख होता है, क्या किसी भी व्यक्ति के इधर उधर होने से मुझे दुख होता है, शोक होता है, तो इसका मतलब मेरा मोह है उस आत्मा के अंदर। बाबा कई बार कहता है चट्टियों वाला कपड़ा भी मैंने पहना तो भी अच्छा है, और अगर बहुत ऊंची क्वालिटी का कपड़ा भी मैंने पहना तो भी बहुत अच्छा है, दोनों में मैं राजी हूँ। अगर 36 प्रकार का भोजन भी मुझे मिला तो भी बहुत अच्छा है, और अगर मुझे सूखी रोटी और गुड़ मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है। तो हर हाल में राजी होना, ये बिल्कुल लोभ और मोह से मुक्त स्थिति है। लोभ और मोह ऐसे कहेंगे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई वस्तु मैं चाहती हूँ, अभी मेरे पास है नहीं लेकिन मुझे उसकी इच्छा है, तो वो लोभ है, और जो मुझे मिल चुकी है, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गई है और अब उसमें मेरापन आ गया मेरा, कि ये मेरी है, तो वो मोह है। तो ये दोनों ही जो हैं वो लगभग एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, बहुत एक दूसरे के समीप हैं लोभ और मोह। और जहां भी हमें वो दुख देते हैं इसका मतलब उसका अंश वंश अभी भी मेरे अंदर है। और अहंकार की जहां तक हम बात करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के लिए हम हमेशा सुनते हैं, अभी भी गीत हमने सुना, बाबा कितने निरहंकारी। और एक गीत ऐसा भी आता है, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो शिव बाबा भी स्वयं हम बच्चों को मालिकम सलाम करते हैं, या रोज मुरली में हमें याद प्यार और नमस्ते देते हैं, और हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरे से भी ऊंचे हैं, मेरे से डबल पूज्य हैं, मेरे से डबल ताजधारी हैं। शिव बाबा तो सिंगल पूज्य है, सिर्फ निराकार रूप में पूजा होती है, या बाबा तो सतयुग में आता ही नहीं है। आप बच्चे ही सतयुग के या विश्व के मालिक बनते हो, मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। यानी बच्चों को हमेशा अपने से आगे रखते हैं, लेकिन हम जरूर निरहंकारी बनने का प्रयास करते हैं। मैंपन को छोड़ना, ये है निरहंकारी बनना। तो जो मोटे रूप में देह अभिमान है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं धनवान हूँ, या मैं सुंदर हूँ, ये देह अभिमान हमारे छूट जाते हैं जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं। लेकिन जो उसका अंश वंश है, वो भी परखने की शक्ति अगर हमारे अंदर है, तब हम उसे छोड़ पाते हैं। तो जो अहंकार का सूक्ष्म रूप है, सबसे पहला वो समझेगा व्यक्ति कि मैं राइट हूँ, अपनी हर बात में वो अपने को सही समझता है, दूसरे की राय को वो गलत ही मानता है ना, हमेशा उनकी बात को काट देंगे क्योंकि मैंपन है, तो मेरे विचार सही हैं। फिर दूसरा होगा उसके अंदर कि वो कभी भी दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहेंगे, और अगर किसी की तारीफ भी होती है उनके सामने, कोई किसी की प्रशंसा करता है, तो उनको वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने को ज्यादा होशियार समझते हैं, तो फिर दूसरों की तारीफ अच्छी नहीं लगती और उनकी कोई ना कोई कमी निकाल के बताएंगे। तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी तक भी वो अभिमान का अंश है कि मैं दूसरों को अपने से अधिक या अपने से अच्छा स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। जिसके अंदर अभिमान होता है, बाबा हमेशा कहता है, उसको अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। जरा किसी ने कुछ कहा तो बिल्कुल मूड ऑफ हो जाएगा, फीलिंग में आ जाएंगे। तो अगर अभी भी मुझे फीलिंग आती है तो इसका मतलब वो अभिमान का अंश मेरे अंदर है। और जो अभिमान वाले होंगे वो दूसरों को कंट्रोल बहुत करते हैं, वो समझते हैं मेरी ही बात मानी जाए, क्योंकि मैं राइट हूँ समझते हैं, तो फिर मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। या फिर कई बार मेरी बुद्धि तेज है और हम ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत अच्छा जो है दूसरों को समझा सकते हैं, या मेरा योग बहुत अच्छा है, इन बातों का भी कई बार सूक्ष्म में अभिमान या मैपन हो जाता है। मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी ये विशेषताएं हैं, फिर फीलिंग कई बार इस बात में आती है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, इतनी विशेषताएं हैं, फिर भी उससे काम नहीं लिया जाता, उससे सेवा नहीं ली जाती है। तो ये सूक्ष्म मैपन को भी बाबा कहता है, मेरी विशेषता नहीं, मेरे गुण नहीं, लेकिन किसने दिए हैं मुझे, किसकी देन है, ये दादा की देन है, बाबा ने मुझे ये गुण विशेषताएं दी हैं, और अगर सेवा की भी विशेषता मेरे अंदर है तो भी सेवा करना किसने सिखाया है हमको, बाबा ने सिखाया है ना। तो बीच में अगर हम बाबा को रखते हैं और अपने को हमेशा निमित्त समझते हैं, मैं निमित्त हूँ, तो फिर वो निर्माणता हमारे अंदर होती है और उससे हम नव निर्माण कर पाते हैं, तब हमें सेवा में भी सफलता मिलती है। कहते हैं ना, लंका को भी आग कब लगी, जब हनुमान ने पूंछ को आग लगाई तब जाकर के वो लंका को जला सका। तो वो पूंछ कौन सी है, हनुमान को, महावीर को कौन सी पूंछ है? क्या भाइयों में कहते हैं रौब ज्यादा होता है, माताओं में मोह ज्यादा होता है और भाइयों में अहंकार का थोड़ा बहुत अंश ज्यादा होता है। तो जब उस मैंपन की पूंछ को आग लगाई, रौब को रुहाब में बदला, अभिमान को किस में बदलना है, स्वमान में बदलना है। अभिमान नहीं होना चाहिए लेकिन स्वमान होना चाहिए, और जितना देही अभिमानी होंगे उतना स्वमान की स्थिति में सहज रह सकेंगे। तो ये चेकिंग और चेंज जब हम करेंगे तो फिर निर्विकारी हम बन सकते हैं। लेकिन बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बाबा को भी पता है कि ये पुराने संस्कार परिवर्तन करने में हमें समय लगता है, इसीलिए बाबा हमें, हालांकि सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है, लेकिन फिर भी बाबा हमें समय देते हैं। तो जितना हम रोज बाबा को चार्ट देते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, उतना चेंज तीव्र गति से हमारे अंदर आता है और हम निर्विकारी संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए निरहंकारी को अलग से भी अंडरलाइन किया। देखो, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी में भी निरहंकारी आता है, लेकिन फिर निरहंकारी बाबा ने अलग से कहा। तो इतना सूक्ष्म रीति से हमें अपने मैपन की चेकिंग करनी है। और सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी विशेषताएं हैं, ये उन सब में मैं नमित हूँ। बाबा करण करावन हार है। हमेशा इस भाव से हमें बाबा की सेवा में उपस्थित रहना है। तो ये निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति बनाने की विधि है। मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।